चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्तिजे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः मैं अपने परमाराध्यतम गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि दंडत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। पश्चात सन्यासी ब्रह्मचारी गण वैष्णव गण सज्जन गण माताएं बहने यथा योग्य मेरा भाषण आप लोग ग्रहण करें। कल मैंने वैष्णो देवी मंदिर में भक्ति के संबंध में बतलाया था। जैसी हमारी सब लोगों की धारणा है भक्ति की, वो ठीक नहीं है। शुद्ध भावना भक्ति की नहीं है। भक्ति का जहां तहां हम प्रयोग कर लेते हैं, मातृभक्ति, देशभक्ति, पितृभक्ति इत्यादि, शिव जी की भक्ति, दुर्गा जी की भक्ति, गणेश की भक्ति, किंतु जो भगवान है उसी के लिए भक्ति होती है। ये भक्ति शब्द भी भगवान से ही निकला है, इसलिए भगवान है उन्हीं के चरणों में भक्ति होनी चाहिए। कृष्ण, राम, नृसिंह, कल्कि, वामन इत्यादि ये सब भगवान और भगवान के अवतार हैं, और उनमें कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं, उन्हीं से सबका प्रकाश हुआ है। और शंकर जी, दुर्गा जी, ब्रह्मा जी, गणेश जी सब उनके दास भक्त लोग हैं। उनके चरण में गुरुवत सम्मान करना चाहिए, भगवत भगवान के समान नहीं। तो कल मैंने भक्ति का ये बतलाया था व्याख्या, जब तन से, मन से, वचन से, हमारी सारी इंद्रियों से जब भगवान को प्रसन्न करके उनको सुख देने के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं। तन से, मन से, वचन से, सारी इंद्रियों से, सारी भावनाओं से जब हम निरंतर किसी वैष्णव के अनुगत्य में, गुरु के अनुगत्य में जब हम उनकी सेवा करते हैं जिससे कृष्ण ही प्रसन्न हो, ऐसी चेष्टाओं का नाम भक्ति है। किंतु वो भक्ति कब शुद्ध होगी? जब कोई भी संसारी कामना न हो, केवल कामना हो क्या? कृष्ण को प्रसन्न करो। किसके लिए? उद्देश्य क्या है? तो कृष्ण। और उसकी भक्ति कर्म ज्ञान से ढकी हुई न रहे, कर्म की प्रधानता न रहे, ज्ञान की प्रधानता न रहे। हमारे समय से आप यदि सुनते हैं मन लगा करके तो कुछ अच्छा होता, ना तो उसी में झंझट में बजे रह जाएंगे। वो सब बहुत है, बहुत कखनो होते पारे ना, कखनो होते पारे ना। मन दो भागों में विभक्त हो जाता, फिर सुन नहीं जाता। इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पहले ये सब चीजें नहीं थी और लोग विद्वान होते थे, इसको समझने की चेष्टा करें। तो कल मैंने इसकी विशद व्याख्या की, उदाहरण दिया। भगवान का भक्ति कर रहे हैं किंतु उसे अपना कुछ चाहते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाएं, भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, उसे भगवान प्रसन्न हो, किंतु प्रसन्नता से हम उनसे कुछ ले लेंगे। क्या? हमको राज्य चाहिए, धन चाहिए, पुत्र चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छे पति चाहिए, हमारी लड़की की शादी हो इत्यादि। यह संसारिक वासना होगी तो वह भक्ति शुद्ध नहीं रह करके सकाम भक्ति हो जाएगी, एक डिग्री नीचे हो जाएगी, भक्ति नहीं है। भक्ति है किंतु सकाम, और पहली वाली जो है वो उत्तम भक्ति है। अब उदाहरण के लिए ऐसा समझिए, कल तो मैंने जसोदा जी का उदाहरण दिया था शुद्ध भक्ति के लिए। हमारे ध्रुव जी थे, उनके पिता की दो स्त्रियां थी, पहली से ध्रुव, दूसरी से उत्तम नाम का एक लड़का था। एक दिन पिताजी राजगद्दी पर बैठे थे और अपनी दूसरी पीछे से जो शादी की नवजुवती उसके लड़के उत्तम को गोद में बैठा दिया। उसी समय में पहली वाली का लड़का ध्रुव पिताजी के गोदी में बैठने के लिए मचल गया तो उसकी विमाता बोली, तुम मरो, मर करके फिर हमारे गर्भ में आओ तो इस पिता के गद्दी में बैठोगे, अन्यथा नहीं बैठ सकते। क्षत्रिय बालक उसको ये बात बाणु जैसी चुभ गई, सह नहीं सका, रोने लग गया, रो करके घर आया। पिताजी तो उसको गोदी में लेना चाहते थे किंतु अपनी पिछली वाली जो पत्नी है जो अभी आई है उसके कुछ वशीभूत थे, कामी लोगों का ऐसा ही होता है, इसलिए शुद्ध न्याय नहीं कर सके उस बेटे को जो बड़ा वाला था और सब विषय में उससे श्रेष्ठ था, उसको गोदी में लिया। घर में आकर के अपने मैया के पास में रोने लगा, अरे ये क्या कर रहे, रोते किस लिए, हमको पिताजी ने गोद में नहीं, अरे भरी के गोद में बैठना ये क्या है। वो भगवत भक्त थी, उस हरि के चरण गोदी में बैठना ये क्या बैठेगा, अरे हरि कौन है, अरे तुम्हारे बड़े भैया तो हैं, जगत के सबके वो हैं, तो उनका स्मरण करो अवश्य तुम्हारी सारी कामना पूर्ण हो जाएगी। सो गई किंतु वो सोया नहीं, बालक रात में ही उठ करके मधुबन में चला गया, मधुबन माने मथुरा जमुना के किनारे, उसी के पास में उसका पिताजी का कहीं राज्य होगा, और जा करके ऐसे हरि को बुलाएं जिसके अंदर में ऐसी भावना होती है जो मैं भगवान का भजन करूं, भक्ति करूं, प्रभु जान लेते हैं, और उसके लिए सदगुरु भेज देते हैं, नारद जी को भेजा। नारद जी उसके पास आए, बोले अरे तू छोटा सा बच्चा पिता के कहने से आ गया, अभी सिंह भालू तुमको खा जाएंगे, घर में लौट जाओ। जितना समझाया किंतु माना नहीं, माना नहीं, थोड़ा सा तू हवा कमाए तो अच्छा, उधर में खोल दो। इधर मत खोलो, उधर मैं खोल दिया, इधर से सबको हवा, इधर खोला है। तो उन्होंने गुरु मंत्र दिया, भगवान का मंत्र दिया ताकि जाओ चित्त को स्थिर करके इस मंत्र को जाप करना, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी, भगवान तुमको दर्शन देंगे। और वो जमुना में स्नान करके एक सरोवर के निकट ऊंचे स्थान पर बैठ करके और तन्मय हो गया, और ऐसी कठोर तपस्या की, मंत्र जपा ध्यान में, 6 महीने में उसको भगवान मिले। खाना पीना छोड़ दिया, वायु लेना भी छोड़ दिया, समाधिग्रस्त हो गया, भगवान जल्दी से नारायण के रूप में आए, उसको दर्शन दिए। भगवान तो जानते हैं उसकी इच्छा को, जो किस लिए उन्होंने वरदान दिया 36,000 वर्ष निष्कंटक राज्य भोगेगा तू, जाओ कह करके अंतर्धान हो गए। अब भगवान के दर्शन से उसकी ज्ञान की नेत्र खुली, भक्ति का है मैंने क्या किया, हमने तो कांच का टुकड़ा मांगा था किंतु ये तो हीरे के टुकड़े चिंतामणि मुझे मिल गई और मैंने ठुकरा दिया। भगवान का प्रेम नहीं मांगा और मैंने ये संसार में फंसने वाले राज्य को मांगा, अब तो जो होना था सो हुआ। अब ये भगवान प्रसन्न हुए उसकी भक्ति से, उनका ध्यान लगाया नारायण का। ये भक्ति तो है किंतु शुद्ध भक्ति नहीं है, क्यों अराज्य मांगा, कृष्ण की प्रसन्नता भगवान की प्रसन्नता नहीं मांगा, इसलिए ठग गया, फिर रोने लग गया। बोले जी अच्छा राज्य करो, 36,000 राज्य बस करना पड़ा, किंतु राज्य कैसा किया, अब उनको होश आया, भक्ति का प्रचार करने लगे और जगह जगह में भक्ति का प्रचार होने लग गया, साधु संतों का आदर होने लगा और संसार में उनके राज्य काल में सुख और शांति मिल गया। और अंत में भगवान के दूत आए जो चलो अब तुमको ले चलेंगे हम लोग भगवान के लोक में। कहा मेरी मैया नहीं, मैया कहाँ है, मैया नहीं होगी तो नहीं जाए, अब ये देखो संसार में आसक्ति भी बनी हुई है, इसलिए वैकुंठ की गति ना होकर के उनको इस ब्रह्मांड के अंतर्गत में ही एक हरि लोक है, उनको ध्रुव जी का वो स्थान है जो सदा ध्रुव निश्चल रहता है उत्तर की तरफ में, उसी से दिशाओं का निर्देश होता है। तो ये भक्ति जो हुई, इसी तरह से लोग जो संसार में भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, सोचते हैं कि हमारी उन्नति हो, दुख कष्ट न आने पाए हम पर, इस तरह की जो भक्ति होती है ये शुद्ध भक्ति नहीं है। अभी से आगे चलो प्रहलाद महाराज जी का, प्रहलाद महाराज जी की कथा आप सब लोग जानते होंगे, हिरण्यकश्यपु का पुत्र, अंतिम पुत्र, वो बचपन से ही उसके पिता से विरोध हो गया, पिताजी कहते जे भगवान का नाम मत लो, और वो क्या कहता था, वो नाम नहीं छोड़ता, उत्तर तो कुछ नहीं देता किंतु भगवान का नाम नहीं छोड़ता। अब वो विरोध बढ़ता गया, स्कूल में भेजा गया, स्कूल से जब लौट करके आया 6 महीने के बाद में गुरुकुल से, तो उसकी मैया ने उसको सजा दिया, अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिया, पिताजी गोदी में लेकर के बोले स्कूल में तुमने क्या पढ़ा, कैसी तुमको शिक्षा हुई और तुमको क्या अच्छा लगा। उन्होंने कहा हे पिताजी, हे असुरों के महाराजा, ये संसार में संसार रूपी अंधकूप को छोड़कर के वैष्णव के चरणों में रहकर भगवान का भजन करना ही सर्वोत्तम है, यही शिक्षा है। भाजी तुमने कहां से यह शिक्षा पाई, तुम्हारे गुरुजी ने देखा, नहीं तो गुरुजी ने नहीं, कौन दिया, भाजी मेरी तो ऐसी ही प्रारंभ से ही रुचि है, उनके गुरु थे नारद जी, जो माता के गर्भ में थे उसी समय में नारद जी आकर के उनको हरिनाम और दीक्षा दे गए थे, इसलिए बचपन से ही वो साधु स्वभाव के थे, इसलिए 5 वर्ष की स्थिति में ही उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। उन्होंने कहा ये संसार अंधकूप है, अंधकूप माने क्या, जैसे कोई कहीं जा रहा हो राहगीर, वन जंगल में एक कुआं मिला, एक बाघ ने उस पर आक्रमण किया, प्राण बचाने के लिए वो एक कुएं के पास जा करके और उस पर देखा जैसे घास जमी हुई है, कुछ पौधे उगे हुए हैं और वो कुछ पानी सूख गया है, बस उसकी दो डाल को पकड़ करके झुक गया, नीचे देखा सांप विषधर फों फों कर रहे, नीचे भी नहीं जा सकता, दो डाली और पीपल के पेड़ के दो छोटे छोटे पौधे पकड़ करके झूल गया। नीचे जाए सांप, ऊपर जाए बाघ, अभी मरेगा। और जिन डालियों को पकड़ करके वो रहा है, झूल रहा है, एक काला एक सफेद दो चूहे डालियों को कुतरने लगे। यदि पकड़े तो भी वो तो नीचे जाना है, काटेंगे। अब क्षण भर की ही विलंब है और नीचे जाएगा सांप काटेंगे, ऊपर जा नहीं सकता बाघ है, चारों तरफ में मृत्यु के बीच में फंसा हुआ है। उसी समय यदि कोई व्यक्ति भगवान का शरण ले, भगवान उसकी रक्षा करे। दूसरा कोई विश्व में नहीं है, माता पिता भाई बंधु राजा प्रधानमंत्री कोई भी नहीं है, जनरल्स जो मिलिट्री के होते हैं वो भी रक्षा नहीं कर सकते कोई। इसलिए यहां पर ये बतलाया, ये चूहे क्या है, पीपल जो है अपने कर्मों का पेड़ है, अपना पुण्य और पाप का जो कर्म है उसको हम पकड़ करके झूल रहे हैं इस संसार में। दो डालियां पीपल की काट रहे हैं चूहे, एक काला एक सफेद, अर्थात एक दिन है एक रात है। हमारी आयु को रात में रात काट लेती है, और ऐसे करते करते किसी का 10 वर्ष हो गया, किसी का 25, किसी का 30, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 80-90, ये आयु चली गई। कितनी उम्र हुई, 80 वर्ष की। अरे 80 वर्ष की नहीं, 80 वर्ष तो कट गया खत्म। कितनी उम्र है, 25 वर्ष की। अरे 25 वर्ष कट गया, कितना दिन जीना है कोई ठीक नहीं। और जिस डाल को पकड़ करके झुक रहा था, उसके ऊपर की डाल में मधुमक्खी के कुछ छत्ते लगे हुए थे और उसे मधु टपक रहा था, सोना जैसा बिंदु, बहुत मधु। उसने जीभ को आगे करके और एक बूंद अपनी जीभ पर लिया, क्या ही मधु, भूल गया जब एक सेकंड के अंदर में मरना है, तो ये मधु क्या है। पति और स्त्री का सुख, बाल बच्चों के प्रति मोह का सुख, संसार में कभी प्रधानमंत्री हो गए उसका, और फिर पाया कट गया, धम से नीचे गिर गए, तो फिर उनका कहीं अवलंबन, कोई एक पैसा कौड़ी भर भी उनको नहीं पूछेगा। हम लोगों का विश्व भर में जितना आदर होता है, राजे महाराज प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहीं भी आदर नहीं, हम लोगों का हृदय से आदर करते हैं। इन वचनों के लिए उनको कोई आदर नहीं, जब तक है तब तक तो हो, जहां गए कुर्सी तहां सब खत्म। तो ये जो सुख है ये मधु है, उसमें से जब मधु मिलती है वाह वाह बहुत सुख। और यदि कहीं टहनी हिल गई और मधुमक्खियां लेकर के काटी तो क्या होगा, मुख खुल जाएगा, कुछ देर के बाद में मर भी सकते हैं। ये मधु तो हुआ, मधुमक्खियां क्या है प्रॉब्लम। जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कोई बीमारी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कष्ट नहीं है, रोग नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा कौन हो सकता है, भगवान का भजन करने वाले ऐसा हो सकता, वो लोग सुखी रह सकते हैं, दूसरे नहीं। और उसमें एक और बात है, जो लोगों को पद का गौरव है, उच्च कुल में जन्म लेने का गौरव है, अपने सौंदर्य पर गौरव है, अभिमान है, मैं बहुत सुंदर सुंदरी, और उच्च विद्या का जिसको अभिमान है, मैं बहुत विद्वान हूं, उन लोगों को भक्ति होना बड़ा कठिन है। यदि हो जाए समझो ये भगवान की विशेष कृपा है। ऐसे संसार रूपी चक्र को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। एक चीज और समझो, कल बतलाया यह शरीर मैं नहीं हूं, ये तो हाड़ मांस रक्त और पैखाना टट्टी की एक वो क्या है बैग है, इसको हम लोगों ने समझ रखा है यही मैं हूं। जितना अच्छी तरह से रखो, संसार में सारे वैज्ञानिक साइंटिस्ट डॉक्टर्स मिल करके एक रोगी के बुढ़ापा को और मृत्यु को बचा नहीं सकते ना, कोई नहीं बच सकता। इसलिए अभी से कुछ कुछ भगवान का नाम करना, भगवान की भक्ति हो। कैसी भक्ति है वो बताए। प्रहलाद महाराज जी ऐसे ज्ञानी थे, तत्व दर्श थे। हिरण्यकश्यप को जितनी चेष्टा हुई वो किया मारने के लिए, विष दिया ले गए पी गए, उनको कुछ नहीं हुआ। पहाड़ों से गिराया, कुछ नहीं हुआ। समुद्र में बीच में फेंक दिया, न जाने कौन बचा करके किनारे लगा दिया। हाथियों से दबवाने की चेष्टा की, हाथी निकट आकर के और भाग जाते। बाघों के सामने भी छोड़वाया, उसकी एक बहन थी होलिका, उसको बरता कि आग में नहीं जलेगी। आग की बहुत बड़ी भारी चीता बनी, आग लगा दिया गया। धक धक जब जलने लगी आग, तो प्रहलाद को लेकर के उसमें बैठ गई, वो क्षण भर में जल गई, प्रहलाद उससे निकल आया। ये क्या चीज, यही मैसमेरिज्म है। भगवान का नाम करने वाला, भक्ति करने वाला कभी कोई कुछ नहीं कर सकता। सारा विश्व तो इसका विरोधी हो जाएगा, कुछ नहीं। जाके राखे साइया मार न साके हो, और जो जिसको वो मारना चाहते हैं सारंसार के लोग, उसको कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इस चीज को याद रखना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान ने प्रहलाद से कहा, जे बर मांगो, कुछ बर मांगो, मेरे आने में कुछ विलंब हो गया, तुम्हारे पिताजी ने तुमको बहुत कष्ट दिया। बोले जी मैं बनिया तो हूं नहीं, जे बर मांगू, ध्रुव जैसा बर नहीं मांगा। उसने कहा, अच्छा यदि बर मांगने को कहते हैं तो यही बर दीजिए, जो हमको बर मांगने की कोई इच्छा हो तो वो नष्ट हो जाए। प्रभु हंसने लगे, अरे तो बहुत बुद्धिमान है, फिर भी एक गोई भर मांगो। उन्होंने कहा, यदि प्रसन्न है तो ये दीजिए, हमारे पिताजी ने आपका विरोध किया है, उनके ऊपर में आपकी कृपा हो जाए, वो मुक्त हो जाए। अरे ये भी हो गया है पहले से, जिसके कुल में ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा उसके 21 पीढ़ी के माता पिताओं का उद्धार हो जाएगा, और जो मध्यम श्रेणी का होगा उनका 14 पीढ़ी का, और जो साधारण में कुछ नहीं जानते हैं, गुरु से दक्षिणा लेकर कभी आरंभ किया भजन, उसके 7 पीढ़ी के लोगों का उद्धार अपने आप हो जाए। फिर भी मांगो। तो उन्होंने कहा, जिस संसार के लोग दुखी हैं आपको छोड़ करके, और मैंने यदि आपकी तनिक भी भक्ति की है तो उनका कल्याण हो जाए, वो मुक्त हो जाए, और उनका दुख लेकर के मैं संसार में जीवन भर 10-20 लाख जन्मों में मैं भोग डालूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले जैसे सब तो नहीं, किंतु जो तुम्हारा हमारा यह हरि कथा सुनेगा कि कैसे हमने तुम्हारी रक्षा की, वो जीवन मरण से मुक्त हो जाएगा। तो यहां पर प्रहलाद महाराज जी को भगवान के सेवा के अतिरिक्त और कोई वासना नहीं थी, उनकी भक्ति कर्म और ज्ञान से ढकी हुई नहीं थी, इसलिए उनकी भक्ति कैसी है, शुद्ध भक्ति। यदि किसी को भक्त बनना है तो प्रहलाद जी का जीवन चरित्र श्रवण करें, वैसा बनने की चेष्टा करें। कोई भी इच्छा न हो, प्रभु प्रसन्न हो, और हमारा जीवन मरण का the endless chain of birth and death सदा के लिए रुकवाना चाहते हैं, भगवान का भजन। भगवान का भजन करना कोई कठिन नहीं है। अरे सबरे उठ करके हाथ जोड़ करके हरे कृष्ण 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 हरे नहीं आता है पूरा, कृष्ण कृष्ण ये टेढ़ा है जरा न, इसलिए टेढ़ा न करके सीधा ही बोलो राम राम। वो भी नहीं आता है तो मरा मरा कर दो तो भी कल्याण है। इतना सहज, न झुकना पड़ता है, न प्रणाम करना है, न कुछ करना है, हरे कृष्ण कर दो सवेरे उठ करके। क्या लगता है, पैसा लगता है, न कुछ लगता है, दिन में रात में बच्चे स्त्रियां पुरुष ब्राह्मण दरिद्र कोई भी कर सकता है, इसलिए भक्ति बड़ी सहज है। किंतु इनकी भक्ति में एक त्रुटि है। क्या त्रुटि है? भगवान की समस्त इंद्रियों से सेवा करनी चाहिए, यह तो है भक्ति। इन्होंने क्या सेवा की? इनके जो प्रभु हैं भगवान हैं नृसिंह देव, इनको भूख नहीं लगती तो खिलाएंगे क्या? उनको तो भूख ही नहीं है। चलने में पैर उनके थकते नहीं है जब पैर दबाए, प्यास तो है नहीं तो वो पानी क्या पिलाएंगे। उनको किसी तरह की चीज की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए क्या सेवा करेंगे, मन से उनका चिंतन करते हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हमको अपनी भक्ति मन ही से और बाकी इंद्रियों से नहीं करते। इसलिए इनकी भक्ति में यह त्रुटि है, अपनी सारी इंद्रियों को काम में नहीं लगा सके। किंतु इनसे बढ़ करके हनुमान जी को देखो, हनुमान जी क्या करते हैं, चलते फिरते उठते प्रभु सब समय उनका उनकी सेवा करते हैं, वन जंगल में फल फूल जहां से वो जो कुछ ले आकर के उनको खिलाते हैं, उनके प्रभु को भूख लगती है राम को, ना? वो अपने भक्तों के लिए सब समय अपने को समर्पण कर रखे हैं भगवान, और हनुमान उस प्रभु जी की सुन, वो रात में जब प्रभु सोते हैं तो उनके पैर दबाते हैं, उनके प्रभु के पैर थक जाते हैं, वो सुलाते हैं और अपने पूछ से ही किला जैसा बना करके उसमें किसी को आने नहीं देंगे लंका में युद्ध के समय में, और कभी कभी अपने कंधों पर प्रभु को बैठा करके उड़ जाते हैं आकाश में, सीता जी को पता लगाने के लिए समुद्र को लांग गए और सबको परास्त करके चले आए। इस तरह से हनुमान जी दिन रात सेवा करते, इसलिए इनकी भक्ति की श्रेष्ठता प्रहलाद महाराज से भी अधिक है, ध्रुव से भी अधिक। बस एक कीर्तन करो, ए तुम करो तो हारमोनियम दे दो, हारमोनियम आप बजाएंगे, बजाइए, आ जाइए पास में, बजाएगी हारमोनियम, जहां है वहीं से आरंभ करो, ठीक है वहीं करो, बंगला का कीर्तन करो खूब अच्छा, बंगला में भी मधुर कीर्तन है, सब लोग सुनो, जाइए इधर में जगह है,
you Thank you.
मैं हनुमान जी की बात सुना रहा था, उनकी भक्ति कितनी उच्च कोटि के है, भजन हो तो ऐसा, सारी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भगवान प्रत्यक्ष हैं। प्रहलाद जी अपने इष्ट देव को क्षण भर के लिए देखा, और ये सारे जीवन ब्रह्मचर्य रहकर, शादी इत्यादि नहीं की, जो हमारा मोह कहीं दूसरी लोग और न लग जाए, संपूर्ण रूप से एक अनिष्ठ हो करके भजन करते हैं। भजन माने सेवा, सेवा करते हैं। किंतु थोड़ी सी कमी है, हनुमान जी की भक्ति में भी थोड़ी कमी है। यदि प्रभु का आलिंगन करना चाहे नहीं कर सकते, यदि सीता जी जहां है वहां पर रह करके उनकी सेवा नहीं कर सकते, अपना जूठा उनको नहीं खिला सकते, उनके साथ में एक सैया पर नहीं बैठ सकते, संभव पर नहीं उनके लिए, उनकी भक्ति ऐश्वर्यमयी है, यह संभव पर नहीं है उनके लिए। जो उनके पलंग पर बैठ जाए, अरे वो क्या, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी भी उनकी सेज पर, सिंहासन पर एक साथ नहीं बैठेंगे, सभी सेवक हैं। इसलिए पांडवों की तरफ में चलिए, कैसे भक्ति करते हैं, भगवान उनकी भक्ति के वशीभूत होकर के उनका रथ चलाते हैं, और वो प्रभु सेव्य से सेवक बन गए अपने भक्त के, ये भजन का प्रभाव है। अर्जुन और कृष्ण एक ही थाल में खाते हैं, एक सैया पर सोते हैं, कैसे एक सैया पर सोते हैं, एक समय नारद जी भगवान के भक्तों का दर्शन करने के लिए चले, शंकर के पास में गए, बोले मैं भगवान के सबसे श्रेष्ठ भक्तों का दर्शन करना चाहता हूं। उन्होंने जाओ इंद्रप्रस्थ में, अर्जुन के भवन में, राजभवन में तुम जाओ, वहां पर सबका सबसे श्रेष्ठ भक्तों को देखो, और भगवान को भी वहीं पर तुम्हारा दर्शन होगा। बीड़ा बादन करते हुए वहां पर पहुंचे और देखा, प्रेम में बेसुध हो गए, हाथ से बिना भी छूट गई, देखा कि आज एक ही पलंग पर अर्जुन और कृष्ण सो रहे हैं, अर्जुन का पैर कृष्ण के छाती से होकर के उस पार चला गया है, उसको सत्यभामा रुक्मिणी जी पलोट रही हैं, और कृष्ण का चरण अर्जुन के छाती से होते इधर गया है, तो उसको द्रौपदी और सुभद्रा जी, और कृष्ण के मुख से अर्जुन के मुख से कृष्ण कृष्ण के रोए रोए से निकल रहा है, आज तक हमने ऐसा कोई भक्त नहीं देखा। अरे कृष्ण ने अपनी बहन की शादी अर्जुन से की दी, उनके साला बन गए, बतलाओ तो इससे और अधिक रिलेशन क्या होगा। अर्जुन के पुत्र को कृष्ण धनुष बाण अपने आप सिखला रहे हैं, द्रौपदी की रक्षा करने के लिए वो वस्त्र बन गए, भगवान जी इनकी सब प्रकार से रक्षा कर रहे हैं, ये भक्ति जिसके वशीभूत हो जाए। किंतु इन लोगों के भक्ति में भी कुछ कमी है, पांडवों के भी, वो क्या, एक बार अर्जुन ने देखा विश्वरूप युद्ध में उनके हजारों मुख, हजारों शीर और हजारों अस्त्र शस्त्र, और उनके मुख में असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड को देखा, डर गए अर्जुन, अरे ये प्रभु, इनको मैं अपना रथ चलवा रहा हूं, घोड़े धुलवा रहा हूं, नौकरी में नियुक्त कर रखा है, उन्होंने खुद बहन की शादी करके साले बन गए हैं, ये सब झूठे, हर समय उनको सखा नहीं कहूंगा, एक पलंग पर नहीं सोऊंगा, अपना रथ नहीं चलाने दूंगा, बस उनके चरणों के नीचे बैठ करके वंदना स्तुति स्तव करूंगा। देखो उनका वो जो सखा भाव है, मित्रता का भाव है, वो सब दूर हो गया एक मिनट के दर्शन से ही विश्वरूप का। ये तो हुआ पांडवों का, किंतु इनसे श्रेष्ठ उद्धव जी हैं। ये लोग तो कभी कभी पांडवों को दर्शन भगवान का होता है, कोई दुख में पड़ते हैं तो उनके घर में रहते हैं, किंतु उद्धव जी भगवान के मंत्री हैं, वो उनके उपदेशक भी हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं, सारी विद्याओं के परिचय परिपूर्ण हैं, उनको कोई ऐसी विद्या जो नहीं आती है, इसलिए कृष्ण के बहुत सुंदर सेवक सखा इत्यादि सभी कुछ उद्धव जी है। उन्होंने कहा, हे उद्धव तुम हमारे जैसे प्यारे हो, हमारे पुत्र ब्रह्मा जी नहीं प्रिय है, शंकर जी हमारे समान हैं, वो भी प्रिय नहीं है, हमारी लक्ष्मी जी जो मैं हृदय में विराजती हैं, वो भी नहीं प्रिय है, शंकरसन हमारे भैया हैं, वो भी हमारे प्रिय हैं, यहां तक कि अपना शरीर भी उतना प्रिय नहीं जितना प्रिय हो। यदि अपना कहीं जाना होता है तो प्रतिनिधि के रूप में न जाने पर उसको भेजते हैं, इतने उनके अधिक प्यारे हैं, दिन रात खाते पीते समय भी उनके साथ रहते हैं, रुक्मिणी के महल में भी जाते हैं तो उनको साथ लेकर के जाते हैं, किंतु उनमें भी किछु किंतु है, उनको ऐसा था अभिमान जो मैं भगवान का संसार में सबसे श्रेष्ठ भक्त हूं, ये भगवान अपने मुख से कहते हैं और सभी लोग इस बात को मानते हैं, इसलिए मेरे समान और कोई भक्त नहीं। तो एक बार कृष्ण ने उनको ब्रज में भेजा, जब से मैं ब्रज में आया, ब्रज से गोपियां दुखी हैं, गोप लोग दुखी हैं, माता पिता मेरे दुखी हैं, सुनते हैं कि वहां पर गाय मेरी के बिना मर रही है, बछड़े दूध पीते नहीं, कोयल अब नहीं कुहकती वहां, मोर नित्य नहीं करते, ब्रजवासी लोग का जाने कितने दिनों से खाए पीने ये बिना अंधे हो रहे हैं, मैया भी अंधी हो गई, रोते 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 रोते, कोई भी पशु चरता नहीं है, सारा ब्रज मानो श्मशान भूमि बन गया है। उनके धीरज, जाओ हमारे माता पिता को, मैं अभी किसी कारण से नहीं जा सकता, जाओ उनको सांत्वना दे आओ। कृष्ण की इच्छा ये नहीं थी कि ये सांत्वना देने जाए, उनका मतलब यह था ये हमारे माता पिता को और गोपियों को क्या सांत्वना देगा, मैं ही नहीं दे पाता हूं तो ये क्या देगा। हाँ एक बात है, मैं यहां पर मथुरा में मैं अकेले बड़ा दुखी हूं, गोपियों के और गोपों के माता पिता के विरह में मैं बहुत संतप्त अत्यंत दुखी हूं, मुझे सांत्वना देने वाला कोई नहीं। ब्रज में जब गोपियां रोती हैं परस्पर एक दूसरी को संतना देती है, सखी रो मत, फिर कृष्ण आ जाएंगे, कन्हैया आ जाएगा, मत रो मत रो। श्रीमती राधिका जी को सभी सहेलियां मिलकर के समझाने वाली हैं, दुख दर्द परस्पर बांट लेती हैं, किंतु कृष्ण का दुख कौन बांटेगा, कोई मथुरा में है द्वारका में है जो दुख बांट सके, कोई नहीं है। इसने उन्होंने सोचा जी इसको ब्रज में भेजूं अपने गुरु के पास में और वहां पर कुछ प्रेम सीखे, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हो, प्रेम नहीं है सुना है जगत उसके, यदि स्त्री से बच्चों से प्रेम नहीं है तो स्त्री की व्यवस्था आस्ते तुम्हारी भी ऐसी अवस्था, प्रेम होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए, तो जो प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा वो कुछ नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि गॉड इज लव, लव इज गॉड, कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप है, मूर्ति तो वो कृष्ण इनको भेजना चाहते हैं। मैं गोपियों की पाठशाला में मैं पढ़ा था प्रेम, हेड अध्यापिका प्रधान अध्यापिका कौन थी, प्रिंसिपल राधिका जी, ललिता विशाखा वन वन डिपार्ट के एक एक डिपार्टमेंट के प्रेम की शिक्षा देने वाली है, प्रोफेसर है वहां पर, उद्धव जाएगा कुछ प्रेम का पाठ पढ़े, जो प्रेम क्या है और तब फिर लौटेगा तो हमारा दुख दर्द बांट लेगा, कुछ कह सकेंगे वो सुन सकेंगे। इसलिए भेजा, उद्धव जी गए ब्रज में, ब्रज की स्थिति देखी, प्रेम में पागल हो गए, गोपियों का प्रेम देखा, जो कृष्ण को दिव्य उन्माद में गाली दे रही है, निंदा करिए धूर्त चोर लंपट झूठ बोलने वाला, उनसे कोई प्रीति मत करे, इस प्रकार से उनको कह रही है, उल्टा सीधा कह रही है, प्रेम में भाव में विधूर होकर के। और उद्धव जी जा करके सुन रहे हैं, कहे ऐसा प्राण प्रेम तो भूतो न भविष्यति, कभी हुआ न होगा, प्रेम में ऐसी पागली नहीं हो गई है, पागल भी होता है तो कम बेसी, और ये पूरे के पूरे तन्मय होकर के पागल हो गई, एडमिशन नहीं हुआ उनका, रिजेक्ट हो गया प्रार्थना, क्यों, प्रेम पढ़ने के योग्य ही नहीं, प्रेम पढ़ने के लिए भी तो एक क्वालिफिकेशन चाहिए, यदि कम से कम 80% मार्क आया तो इस कॉलेज में दाखिला होगा, नहीं तो नहीं होगा, विशेष करके मेडिकल डिपार्टमेंट में 80% तो रख देते हैं, ऐसे दिमागी लड़के आए और बाकी छट जाए, तो प्रेम की पाठशाला में, उनकी पाठशाला में 99 था, इतना जिसका आया वो भर्ती होगा, तो उद्धव जी का इतना मार्क नहीं था इसलिए रिजेक्ट हो गया, भर्ती नहीं हुए वो ऊपर से देख करके चले आए, इतना प्रेम गोपियों का, नंद बाबा का प्रेम देख करके चकित हो गए, सोने के रथ में चढ़ करके गए, उनको समझाने के लिए कृष्ण सोने का रथ, अब तो वही राष्ट्रीय सिंहासन पर हैं, कंस वाला सोने का रथ इनको मिला है, उसी पर अपने दूत को भेजा जिस जाओ ब्रज में, उस पर चढ़ करके जब गए तो गोपियों ने पूछा एक गोपी से, ये किसका सोने का रथ है, अरे तू नहीं जानती कंस मारा गया है, अब उसका 12वें दिन में पिंडदान होगा, जानते आप लोग हिंदू है पिंडदान होता है मरने के बाद, वहां पर कोई पिंड नहीं है मथुरा में देने के लिए, यहां पर पिंड है, कैसे, सब गोपियां गोप लोग मर गए हैं कृष्ण के विरह में, इसलिए उनके इस पिंड को लेकर के उनको दान किया जाएगा, इसलिए आया है, नहीं तो और इसका काम क्या है, तो सोने के रथ पर किस लिए आया, तो इसलिए आया ये दिखलाने के लिए, अब मैं गौगम का चरवाहा नहीं हूं जो बेंत लेकर के गाय को अब चराऊंगा, अब तो मैं राज राजेश्वर बन गया यहाँ का, हमारा नौकर चाकर भी दूध भी सोने के रथ में चल सकता है, ये दिखलाने के लिए अपने माता पिता को ये भेजा है सर, काजी मैं रथ पर चढ़ करके क्यों आया, हे पृथ्वी तू फट जाओ मैं तुम्हारे अंदर समा जाऊं, अरे तू ये तो सांत्वना देने का ये रीति नहीं है जो सोने के घोड़े के रथ पर चढ़ करके आए, अत्यंत लज्जित हुए, बड़े दुखित हुए, पद पद में उनको ग्लानी हो रही है, अच्छा तो ये किस लिए आया, एक दूसरे से पूछ रही है किस लिए आया, हमसे तो संबंध मानो है और ना है, कोई संबंध तो था नहीं जब विवाह शादी हो गई हो और उनकी मैं पत्नी हूं पूछो, कोई रक्त का संबंध है नहीं, तो ये किस लिए हमारे पास में आया, मालूम होता है कि माता का कोई संबंध पिता का संबंध कोई छोड़ नहीं सकता, जैसे कोई मिट्टी का बर्तन है, कोई कहे जब मिट्टी हमारे में नहीं है तो ये भूल है ना, घड़े में क्या है, मिट्टी के घड़े में सर्वत्र तो मिट्टी है, उसको अब जला करके उसको पक्का कर दिया गया, किंतु मिट्टी ही मिट्टी है, ऊपर मिट्टी के अतिरिक्त घड़ा का अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए क्या कह रहा था, हाँ तो यशोदा मैया से ये पैदा हुआ नंद बाबा के, और इसलिए उनका ये जो कुछ है वो मैया के गर्भ में ये कृष्ण पैदा हुआ, माता पिता को कोई इनकार नहीं कर सकता, न माता को न पिता को, सभी लोग उनके ऋणी हैं, और ये नहीं कह सकते कुपुत्र हो गया भी तभी पिता का ये हमारा ये बेटा है, और पुत्र भी यही कहेगा जी हमारा पिता है, चाहे शत्रु भले ही हो किंतु पिता है, यह संबंध छूटता नहीं। शायद अपने माता पिता को सांत्वना देने के लिए आया हो, तो यहां पर क्यों आ रहा है? निर्जन वन में जहां हम हैं, जिसके लिए हम वैरागिनी बन गई, आज रास्ते की फकीर बन गई, हमारा घर बार संसारिक नाता सब कुछ छूट गया, इसी के लिए इसे अब संदेह नहीं हो सकता। अब हम लोग इस पर विश्वास करना छोड़ दिया, ये भूल सकता है तो हम क्या नहीं भूल सकते? फिर कहते हैं और यही तो मुश्किल है, इसको छोड़ सकते हैं, इनकी कथाओं को नहीं छोड़ सकते। इस प्रकार से कह रहे हैं। तत्पश्चात नंद जी के भवन में गए, नंद जी तो कभी निकलते नहीं थे लज्जा के मारे, जब मैं पुत्र को तो दे आए मथुरा में, खाली हाथ लौट आए, इसलिए किसी के सामने नहीं। और जसोदा जियंदी हो गई प्रेम में रोते रोते, घर में रसोई नहीं बनती, किसके लिए बनेगी? वो तो चला गया मथुरा, चूल्हों पर मकड़ों ने जाल बन दिया, बर्तन जिसमें रसोई होती थी औंधी पड़ी हुई है, कालिख लगी हुई है, मजी हुई नहीं है, कौन माजे, किसके लिए मांगे? भोजन ही नहीं करते हैं, इसलिए घर में कुछ था नहीं। नंद बाबा राजा, आज वो फकीर हो रहे हैं, किस लिए? कृष्ण के लिए। एक यही मुश्किल है, कृष्ण का जो भजन करेगा उसका सर्वस्व कृष्ण ले लेते हैं शक्ति की, और उस पर भी स्थिर रहता है तो उसको सर्वस्व दे देते हैं। नंद बाबा उनको देखा बड़े प्रसन्न हुए, खिलाया पिलाया, खिलाया क्या, अपने घर में तो रसोई ही बननी थी और न बनी। एक ब्राह्मण को कहा कि उसके घर से कुछ दूध का खीर बना करके लाओ, तो उस बेचारे ब्राह्मण के घर में चीनी नहीं थी, केवल दूध और चावल एक साथ पका करके भेज दिया। उद्धव जी ने उसको अमृत के समान खाया। इसके बाद विश्राम करने पर नंद बाबा उससे पूछना चाहते हैं, मेरा लला कैसा है? पूछ नहीं सकते, जब कृष्ण का स्मरण होता है घीघी बंद हो जाती है, बोल नहीं पाते, इतना प्रेम अधिक है कृष्ण के प्रति। मैं क्या कहूं? अंत में बोले जैसे देखो, बड़े सौभाग्य की बात है कि कंस अपने पापों से मरा गया, हमारा भैया वसुदेव ठीक है, उसका कुशल तो है, और ये कहते कहते फिर कहां, जहां कृष्ण का स्मरण हुआ घीघी बंद हो गई। ये प्रेम प्रेम है, इसमें भी इस प्रेम में भी कुछ कमी है जो आगे पूरी होगी, नहीं कह सकते। नंद बाबा बोले अंत में किसी प्रकार से, क्यों कृष्ण कैसा है, कुशल तो है, और एकदम मूर्छित से हो गए। मैं कृष्ण को भूलने के लिए, बेटे को भूलने के लिए वन में जाता और उसके छोटे छोटे चरणों में पैरों का छाप दे करके मैं समझता था कृष्ण, मेरा विरह और दुगना होता। कभी कभी उनको भूलने के लिए गिरिराज गोवर्धन में जाता था, किंतु वहां पर देखता था ऐसी कोई झाड़ी नहीं है, ऐसा कोई कुंज नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, सरोवर नहीं है, जहां पर कृष्ण की कोई अद्भुत कोई न कोई लीला हो। कंदराओं में राधा कृष्ण की वहां पर कुंजे बनी है, उसमें उनकी लीला है, उसको देख करके बस तड़फने लगता था। जमुना के किनारे जाता देखता है यही पर तो कृष्ण सब सखाओं के साथ में खेल करता है, जल क्रीड़ा। और याद आती है, ये कहते 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 हा पुत्र कहकर के रोने लगे। उद्धव जी सोचते हैं इनको तो सांत्वना देने के लिए कृष्ण ने हमको भेजा, तो क्या कहूं, जो रो मत नंद बाबा, ये कैसे कहूं? शास्त्र कहते हैं कि यदि कृष्ण के लिए एक बूंद आंसू गिर जाए तो उसका जीवन सार्थक। कभी आता है आप लोगों को कृष्ण के लिए एक बूंद आंसू? क्योंकि प्रेम नहीं, यही प्रेम हमारा जीवन का लक्ष्य है, ऐसा ही कृष्ण के प्रति प्रेम, तो ये संसार का दुख दूर हो जाएगा, नित्य हम सुखी रह सकेंगे, जन्म मरण का चक्कर भी बंद हो जाएगा। नहीं तो आदमी सुखी नहीं हो सकता। तो ब्रज के एक कीड़े को कृष्ण के प्रति जैसा प्रेम है, हम लोगों को लाखों जन्मों में होगा कि नहीं, किंतु वही होना है, वही चाहिए। नंद बाबा को कहा, उसने क्या कहूं, हे नंद बाबा आप सौभाग्यवान हैं, जगत थोड़ा सार होता है उसका सौभाग्य, आप तो इतना उनके लिए रोते हैं, तो आप परम सौभाग्यवान है, तो और रोएंगे तो सांत्वना हूं, जा क्या कहूं, मत रो, ये कैसे कहूं, रो या रो नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह सकता, बृहस्पति के पुत्र होते शिष्य होते हुए कुछ नहीं सोच सके, ये प्रेम की चीज है, ऐसा ही प्रेम। अंत में बोले जैसे भी हो, पर ब्रह्म आपका पुत्र होकर के आया है, इसलिए आप लोग परम सौभाग्य सौभाग्यवती हो, आप और यशोदा आपके समान और कोई सौभाग्यवान। कहते हुए नंद बाबा ने उनको चुप करा दिया, बोले जे बेटे मैं समझता था कि तुम बहुत चतुर है, बुद्धिमान है, किंतु मैं देखता हूं कि तुम तनिक भी चतुर नहीं, मूर्ख अज्ञानी रह गया। उद्धव को आज तक किसी ने नहीं कहा, कृष्ण ने नहीं कहा, और नंद बाबा कहते हैं तुम छोटा सा बालक अबोध बालक है, क्यों जो संसार में महादुर्भाग्य है उसको तुम सौभाग्यवान कहते हो, ये कैसे, परब्रह्म जिसके पुत्र हैं, जिसे घर में आए लाड प्यार नहीं मिला, उस घर को छोड़कर के मथुरा चले गए, उनके समान ऐसा दुर्भाग्य कौन हुआ जब भगवान आकर के चिंतामणि मिली और उसको खो दिया। भगवान जैसे कृष्ण जैसा पुत्र किसी को होता है, पिता एक था, वो कौन था, महाराज दशरथ। पुत्र का वियोग होने पर उन्होंने कहा हाराम हाराम, नहीं कर सके, मैं मर नहीं रहा, इतना पुत्र वियोग मुझसे सहा जाता है, वज्र का हृदय है, कैसे मैं सहारा, मर क्यों नहीं जाता, यह कह करके मूर्छित हो जाता। ऐसी सारी रात उद्धव जी ने उनको प्रणाम किया, आह कितना हिमालय जैसा ऊंचा प्रेम, इस तरह से ये ब्रज का प्रेम है। हनुमान तक तो भक्ति थी, अर्जुन तक भक्ति थी, अब ब्रज के लोग इनके भक्त नहीं है, क्या है, उनके परिकर है, लीला के परिकर है, जैसे कृष्ण है कृष्ण के समान ऐश्वर्य सब कुछ लोगों का है, कृष्ण से कम कोई नहीं, उनका एक एक सखा विश्व ब्रह्मांड का प्रलय और सृष्टि कर सकते, ये गोपियां ही करती हैं, कृष्ण नहीं करते, कृष्ण क्या करते हैं, इच्छा करते हैं, और विश्व का सृजन संहार कौन करता है, उनकी शक्ति राधा जी करती है, इसलिए गोपियों को भक्त मत समझो, कृष्ण का अंग समझो, कृष्ण ही समझो, इसलिए राधा कृष्ण दोनों का भजन होना चाहिए। इसके बाद में गोपियों के निकट गए, सवेरा पर होने पर गोपियों का जो हाल देखा स्थिर न रह सके, गोपियां कृष्ण को धुर चो लंपट मिथ्यावादी इत्यादि सब कह रही हैं, कभी बिगड़ रही हैं कुछ, कभी कुछ कर रही हैं, उनका प्रेम देकर के किसी प्रकार से लौटे हैं, और कृष्ण कहते हैं आप जल्दी से आपको चलना है, नहीं तो वो सब गोपियां भी मर जाएंगी, बछड़े गाय तो गए, सखा लोग भी गए, माता पिता भी तुम्हारे मरने वाले हैं, बस इसलिए जी गए हैं कि तुम्हारा स्मरण कर। तब कथामृतम
मंगलम श्रीमदातलम भूरिगृहं ते भूरिदाजना।
भगवान की कथा अमृत है, जो भगवान का नाम लेगा वह कभी मर नहीं सकता, उसको कोई भी दुख भी नहीं आ सकता, संसार के लोग उसकी महिमा का गान करेंगे। संसार में वे लोग श्रेष्ठ हैं जो राधा कृष्ण के प्रेम को देते हैं, कृष्ण प्रेम को देते हैं। इस तरह से गोपियों का भाव देख करके उद्धव जी चकित रह गए। कृष्ण से बोले जल्दी चलिए नहीं तो सभी मरने वाले। कृष्ण रोने लगे, अच्छा उद्धव कुछ प्रेम का पाठ पढ़ करके थोड़ा सा तो आया, पूरा नहीं पढ़ सका, एडमिशन नहीं हुआ, किंतु देख करके स्कूल तो आया। इस तरह से ये प्रेम की परिपाटी है। जो लोग इस प्रेम में थोड़ा सा लोभ हुआ और भगवान का नाम करने लगे, इन कथाओं का चिंतन करने लगे, उनका जीवन सफल है। और नहीं तो सब एक तरफ से जानवर हैं। जानवरों में कौन सा जानवर? गोखर गधा। जो कुछ करेंगे ये काम में नहीं आएगा कुछ। मान लिया कि आप करोड़ों डॉलर्स, संसार का सब वैभव आपके पास में आ जाएगा, बुढ़ापा और जन्म मृत्यु का कष्ट रोक सकेगा? जाते समय क्या ले जाएंगे? जो कुछ कमा रहे हैं ले जाएंगे? अपने स्त्री को, पति को, पुत्र को ले जाएंगे? कहां जाना है ये भी तो पता नहीं, अंधकार में कहां जाना। इधर अभी से कुछ भगवान का स्मरण कीजिए, यही विद्वता है। लज्जा करने की जरूरत नहीं, जो हम पुरुष हैं, हम विद्वान आदमी हैं, हम बहुत पैसा कमाने वाले हैं, ये अभिमान काम नहीं करेगा उस समय। आजकल पश्चिम देश के करोड़ों पति लोग, विश्व में सर्वत्र उनका नाम है, ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी लोग भी हम लोगों की कथाओं को सुन करके, भारतीय संस्कृति के सब कुछ मांस मदिरा इत्यादि छोड़ करके भगवान का भजन कर रहे हैं। और यहाँ के लोग, यहाँ पर कृष्ण जन्मे राम जन्मे, वहां के लोग अब मांस मच्छरा मदिरे पीने लगे, डाइवोर्स यहाँ भी आरंभ हो गया। किस लिए? इसलिए सब छोड़ो, विद्या का गौरव मत करो, सौंदर्य का गौरव, उच्च कुल का, पढ़ाई के लिखाई का गौरव मत करो। मृत्यु समय में सभी को भी मिला करके जाना पड़ेगा, अमीर गरीब धनी विद्वान, ये सब कुछ काम नहीं आएगा। कि आएगा कुछ बिल बिलाते रह जाएंगे। इसलिए अभी से भगवान का नाम कीजिए। भगवान के नाम में सारी शक्तियां हैं, तुम जो कुछ कहेगा वही पूर्ण कर देंगे। इसलिए भगवान का नाम विशेष करके वैदिक मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। इसमें सारी भगवान की शक्ति उन्होंने सब दे रखा, अपनी एंडलेस मर्सी भी इसी में दे रखी है, सारी शक्तियां। ये साधारण शब्द मत समझो, इसको शब्द ब्रह्म कहते हैं। और गुरु जी जो ब्रह्म नाम हरिनाम करके जब देते हैं किसी को प्रैक्टिस करके, तो वो जल्दी से वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए किसी सतगुरु भक्त से हरिनाम दीक्षा ले करके, आप भगवान का भजन करके, ये जानिए ये हार्ड मांस मैं नहीं, इसके अंदर में सोल है, सुपर सोल है, आत्मा और परमात्मा है, इनका परस्पर संबंध है। इन संबंधों को जान करके भगवान का भजन कीजिए। इस जगत में सुख और शांति पर जगत वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपास्तु। आप सब पर मेरा ये हार्दिक स्नेह आशीर्वाद है। आप लोग भी भगवान का भजन करके अपने जीवन को सुखी बनाइए। कोई प्रश्न कोई है तो किसी को कोई प्रश्न है?
जय राधा माधव जय कुंज विहार।